ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओ।
ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऊंचे से ऊंचा टीचर है, ऊंचे से ऊंचा सतगुरु है, जिसकी अपरम्पार महिमा है, जिसके लिए गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। लेकिन बाबा इतना ऊंचा है तो भी बाबा कहते हैं मैं कितना निरहंकारी हूं। मनुष्य थोड़ा ही ऊंचा उठता है, चाहे पद में, चाहे धन में, चाहे नाम मान शान में, तो उसे कितना अहंकार आ जाता है, हाँ मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा है लेकिन जरा भी अहंकार नहीं। तो जितना शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा है तो ब्रह्मा बाबा भी कम ऊंचा नहीं है। आदि पिता है, प्रजा पिता है, तो उनको भी शिव बाबा जैसा कोई अहंकार नहीं। तो अगर शिव बाबा को कोई अहंकार नहीं, ब्रह्मा बाबा को कोई अहंकार नहीं, तो फिर बच्चों को क्यों अहंकार आता है, है ना? बच्चे थोड़ा थोड़ा अहंकार दिखाते ना, पता चल जाता है कि इसको बड़ा नशा है अपना। फिर अहंकार आने से फिर रोब आता है, फिर गुस्सा भी आता है, मैं जाने क्या क्या और भी विकृतियां आती है। लेकिन हमें भी शिव बाबा ब्रह्मा बाप समान बनना है। इसलिए बाबा के अंतिम बोल भी क्या थे बच्चे, सदा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी रहना। कई पूछते हैं निर्विकारी में क्या निरअहंकारी नहीं आ जाता है, अलग से क्यों कहना पड़ता है निरअहंकारी? तो बाबा उसका भी कारण बताते हैं, क्योंकि और विकार तो जितना सहज है, चलो जीत लिया काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, लेकिन अहंकार तो ऐसा है जो समझते मेरे जैसा कोई नहीं। तो बाबा उस अहंकार को भी मिटाते हैं, क्योंकि बाप समान बनना है। तो हर एक अपने अंदर भी देखे, मुझे भी कहां न कहां कोई अहंकार है। चलो अहंकार इतना बड़ा न भी हो लेकिन अभिमान तो होता ही है ना, फिर भान भी तो हर वक्त होता ही है। लेकिन बाबा समान हमें भी बनना है निरहंकारी। तो बाबा की आज की मुरली इसी पर है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। और बाबा ने 2-3 दिनों से ये भी कहा है, तुम बच्चों को बाप जैसा मैसेंजर बनना है। क्या क्या मैसेज सबको देना है, संदेश देना है, वो हर मुरली में बाबा अलग अलग रूप से समझाते हैं। तो आज भी बाबा ने अपने अलग रूप से मैसेज क्या देनी है दुनिया को वो बताया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 30/7/2026 है। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरअहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई है नहीं। निष्काम सेवाधारी भी नहीं है शिव बाबा जैसा कोई, पर बाबा हमें निरहंकारी भी बनाते हैं और अपने जैसा सब इच्छाओं से मुक्त होना भी सिखाते हैं। तो बाप जैसा निरअहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। ये है उसका निरअहंकारीपना, ये है उसका निष्कामपना। प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? घर चलने का पैगाम तो सबसे बड़ा है ही है, लेकिन और भी कई पैगाम बाबा देते हैं कि सबको बताना है। तो उत्तर है, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। अहंकार जब आता है या अभिमान भी आता है तो क्या क्या मुख से शब्द निकल आते हैं और वो शब्द कितना दुख देते हैं, ये भी अहंकार की निशानी है। और अगर दुख देंगे तो बाबा कहते रिटर्न तो मिलेगा अब हमको ही। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है। क्या पैगाम देना है? तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए तुम सुख धाम में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वो 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। माया की बेहोशी से छूट जाएंगे 21 जन्मों के लिए जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस धरती के तारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझ गए हैं। कौन से हमारे तीरथ? भक्ति मार्ग के तीरथ तो बहुत है, लेकिन हमारे तीरथ कौन से हैं? बाबा बताते हैं, है ना? तो बहुत उसकी भी लिस्ट है, इसलिए गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वो बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। शिव बाबा के माँ वाक्य सुन रहे हैं, तो शिव बाबा ब्रह्मातन में हैं और हम उनके सम्मुख हैं। तो हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल आत्मा, तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। चढ़ाओ नशा। हमारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है और इनको लोन लिया हुआ शरीर है। शिव बाबा सुप्रीम सोल को लोन लिया हुआ शरीर है। तुम तो अपने शरीर में बैठे हो। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के तो ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। हाँ, तो कितने गुरु हो गए? हर एक स्त्री का पति भी गुरु हो गया और बाकी कितने गुरु? तो कितने गुरु हो गए भारत में? तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है, ये तो निश्चय है ना। हमको सदगति को पाना है, ये तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पर हमको निश्चय है कि हमको बाप सदगति दे रहे हैं। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है, पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु है, तो वो तो पावन नहीं कर सकेंगे ना, इसीलिए पतित पावन को बुलाते हैं। कितने ढेर के ढेर गुरु है, कहा एक बार स्टैटिस्टिक्स में कहीं पढ़ा था, कम से कम 1 करोड़ तो होंगे। जो अपने को गुरु कहलाते हैं, चाहे छोटा मोटा पंथ समाज कुछ भी, छोटा मोटा भी कुछ है तो उसका भी वो गुरु बन जाता है। तो कोई को ढेर के ढेर गुरु हैं, कोई को 100 फॉलोअर्स, कोई के 500 फॉलोअर्स, कोई के तो 50 भी होते हैं फिर भी अपने को गुरु गुरु कहता है, कोई के तो लाखों करोड़ों भी फॉलोअर्स होते हैं। जैसे बाबा किसका मिसाल देते हैं, जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स थे, जैसे खोजों का आगा खां गुरु, अभी तो थोड़ा इतना नाम नहीं है, उस समय 60s में उनका बहुत बड़ा नाम था आगा खान। आगा खान पेरिस में रहता, फ्रांस में रहता, उसकी तो कितनी स्त्रियां हैं, वो भी था बहुत, उसका वर्णन भी था, लेकिन गुरु था, इतना उसका मान था, खोजों का गुरु था। तो उनका इतना मान था कि उनको हीरो ने तोला था। अगर आप गूगल सर्च करेंगे उसमें वो वर्णन है कैसे हीरो में तोला था उसको, फिर सोने में भी तोला था, तो बहुत धनवान था। तो जैसे खोजों का आगा खां गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, कितना उनको रिगार्ड देते हैं, फिर भल कुछ भी करने वाला हो, इतनी पत्नियां, इतने बच्चे, बहुत सारा कुछ है उनका, लेकिन कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में तो गुरु अनेक हैं, फिर वो भी नंबरवार होते हैं, गुरु भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई तो पद्मों की होती है गुरुओं में भी, आगा खान की कमाई बहुत है, उनको हीरो में तोल कर दान किया गया था, हीरो में तोला उनको, अब जितनी उसकी उसका वजन था 80 किलो या पता नहीं कितना, तो इतने हीरे दूसरे तरफ रखे और उनको तोला और फिर ये दान किया सारा, उनको हीरो में तोल कर दान किया था उनके शिष्यों ने। आगा खान के अस्पताल भी बहुत है, हमने तो बहुत बड़ा देखा साउथ अफ्रीका में, इतना बड़ा आगा खान का हॉस्पिटल है और वहाँ पर चैरिटेबल है बहुत, उस हॉस्पिटल से सेवा होती है, ऐसे और भी कई हॉस्पिटल होंगे आगा खान हॉस्पिटल। उनको हीरो में तौल कर दान किया था उनके शिष्यों ने, एक तरफ हीरे दूसरी तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे अब बताओ, 80 किलो उसका वजन एक तरफ और दूसरे तरफ तराजू में हीरे, तो कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। जहां तक मुझे याद है नेहरू को भी सोने में वजन किया था, ऐसे कुछ याद है उस समय। दूसरा प्लैटिनम होता है, वो तो सोने से भी ज्यादा महंगा होता है प्लैटिनम, उसकी भी अंगूठियां बनाते हैं, सोने से भी ज्यादा उसका दाम है। प्लैटिनम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सोने से भी ज्यादा है, इतना जल्दी वो पिघलता नहीं है प्लैटिनम, इसलिए बल्बों में जो लाइट है ना वो प्लैटिनम की तारे हैं, सोने से भी ऊंची, वो भी वो पिघलती नहीं है इतना। तो बाबा कहते हैं आजकल सोने में भी बहुतों को वजन कर देते हैं, दूसरा प्लैटिनम होता है वो सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, वो भी वजन कर दिया था उसका भी, उसने उससे भी वजन किया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है, ऐसे गुरु लोग तो ढेर है। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे, शिव बाबा का वजन क्या है, वो सतगुरु है लेकिन उनका वजन क्या है, बिंदी का क्या वजन है। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे, उनको वजन करेंगे, शिव बाबा को वजन कर सकते हैं, एक तराज एक तरफ शिव बाबा और दूसरे तरफ हीरे चाहे प्लैटिनम चाहे कुछ भी, हीरे वजन कर देंगे, उनका वजन हो सकता है, उनका खुद का तो वजन ही नहीं है, शिव बाबा का क्या वजन, बिंदु शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे। ये तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है जिसका कोई वजन ही नहीं है, सबसे हल्का, बिल्कुल सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है। कल गुरु पूर्णिमा पर कितने गुरुओं की पूजा की होगी उनके भक्तों ने, लेकिन हमारा सतगुरु तो एक ही है। तुम्हारा गुरु एक है, तुम जानते हो। शिव बाबा तो दाता है, भगवान कभी भी कुछ किसी से ले नहीं सकते, वो तो निष्काम सेवाधारी है। वो तो देते हैं, लेते नहीं है। बाबा क्या लेगा, बिंदु क्या लेगा, वो तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो क्या समझते हैं? दान करते समय ईश्वर अर्पणम करते हैं तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा, भगवान इसका बहुत बड़ा एवजा मिलेगा अगर हम ईश्वर अर्थ दान करते हैं, कामना तो रखते हैं ना। अब ये तो है बेहद का बाप, इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है? कैसी निष्काम सेवा करते हैं शिव बाबा? बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़ी विश्व का मालिक बनते हैं, उनको कहा ही जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। एक से सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया, बस निश्चय किया कि मैं शिव बाबा का हूँ तो स्वर्ग का वर्षे के अधिकारी हो गए। निश्चय किया बस। बाबा और वर्षे को याद करना है, इनको कहते हैं, शिव बाबा को कहते हैं ज्ञान का सागर। उनकी कितनी महिमा है भक्ति मार्ग में, उसका वर्णन है। कितनी महिमा है? सागर, सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, सारी पृथ्वी कागज बनाओ, और साक्षात सरस्वती विद्या की देवी शारदा देवी, वो खुद अगर ईश्वर की स्तुति गाने लगे, लिखने लगे, तो सब खत्म हो जाएगा, स्तुति कम नहीं होगी। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी एंड नहीं हो सकती। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ, शुरू से बाबा ने जो मुरलियां चलाई सारी लिखते जाओ। लिखते थे, अब इतना कराची से जब भारत आना था तो इतने सारे कागज, तो कहाँ वो बोझ लेके जाएंगे? तो बाबा ने कहा बच्चे भारत में ले जाने की जरूरत नहीं है, बाबा तुमको रोज रोज नई मुरली सुनाते हैं, महावाक्य सुनाते हैं। तो क्या किया, सारे जो भी मुरलियां थी वो सब वो खोद करके अंदर गाड़ दी। तो बाबा ने कहा अभी ये द्वापर युग में ये फिर निकलेंगे और फिर शास्त्र बनेंगे, बाबा ने ऐसे कहा। तो बाबा कहते हैं तो तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाएं। ये नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है जो धारण करने की है, खाली लिखने की नहीं है, किताबें भरने की नहीं है, ये धारण करने की है। जानते हो ये कोई परंपरा तो चलती नहीं है, ये ज्ञान जो बाबा देते वह संगम युग पर ही है, फिर सतयुग में तो चलना नहीं है, इसको परंपरा तो चलती नहीं है। अभी तुमको तंत्र मिलता है, सार मिलता है। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफी है। सारा सार ज्ञान का क्या है? भगवान का परिचय, वही काफी है। बाप का परिचय देने से, रचयिता को जानने से रचना को भी, रचना का भी ज्ञान आ जाता है। रचयिता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। तो बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। रचना का ज्ञान में ये सब आता है ना, कितने जन्म लेते हैं, तो जो सतयुग के आदि में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। चक्र में जब पहले आए होंगे वही आएंगे फिर से। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वो तो भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं। ये सिर्फ तुम्हारा एक जन्म की यात्रा है। कहाँ जाना है? घर जाना है, नई दुनिया में आना है, तो एक जन्म की ये यात्रा है। ये सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं। कंट्रास्ट है ना, उस यात्रा में कितनी तकलीफ सहन करते हैं, इस यात्रा में, याद की यात्रा में कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है। सदगति तो किसी की भी होती नहीं, और किसी से तो सदगति होती नहीं, बाप ही वही टीचर सतगुरु वही सदगति करते हैं। सतगति तो किसकी भी होती नहीं, वो है सुप्रीम ज्ञान का सागर, सर्व का सदगति दाता, वही सबकी सदगति करते हैं। बाकी क्या चाहिए? शिव बाबा से सदगति हमारी हो गई तो बाकी क्या चाहिए? तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं, इतनी सदगति हो जाती है, तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। यहाँ तमो प्रधान है तो वायु आदि भी ऐसी ही तमो प्रधान होती है। कितने अर्थ क्वेक आदि होते रहते हैं। सत्युग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होगी। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तुम उनके बच्चे हो तो किसको भी दुख नहीं देना है। दुख हरता सुख करता के बच्चे हो तो तुमको भी किसको दुख नहीं देना है। सबको ये रास्ता बताना है, सुख का वर्षा पाने का रास्ता, ये सबको बताना है। अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहता है, नाम भी नहीं निशान भी नहीं दुख का। तुम जानते हो बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। हम स्टूडेंट है ना, हम सब स्टूडेंट्स हैं। तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हारी दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं। कौन सी है संजीवनी बूटी? मुझे याद करो, जिससे सब मूर्छित आत्माएं जागृत हो जाती है ना। स्वमान दिलाते हैं बाबा, तो स्वमान जैसे जागृति है, जिससे हमको जागृति हो जाती है कि हम कौन है, हम किसके हैं। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत होने के लिए। फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे, कोई भी मूर्छित बना नहीं होगा, कभी भी मूर्छित नहीं होंगे। वो संजीवनी बूटी है, कौन सी? मन मना भव। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। उनको निराकार निरअहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वो भी साधारण है। ब्रह्मा बाबा को भी किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था। हम दादियों को देखते थे, कितनी निरहंकारी, कितनी निर्मल, कितनी कोमल, कितनी प्यारी है ना। तो देखो बाबा कहते हैं जिस तन में आते हैं वो भी साधारण है। बाप कहते हैं डियर चिल्ड्रन, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, मैं तुम बच्चों का आज्ञाकारी सर्वेंट हूँ। बड़े आदमी भी हमेशा ऐसे लिखते हैं, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। वाइसरॉय होगा वो भी ऐसे लिखता है, ओबीडियंट सर्वेंट। हाँ, अंग्रेजों के जमाने में। तो बाबा कहते हैं आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को श्री श्री तो कभी नहीं लिखेंगे ना, पर आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना। आते ही अपने को श्री श्री लिखते रहते। दादी भी कभी नहीं लिखती थी, दादी प्रकाशमणि कभी नहीं लिखती थी, दादी जानकी दादी शब्द नहीं लिखती थी, बस प्रकाशमणि जानकी, बी के जानकी, बी के प्रकाशमणि। तो अपने आप को दादी तो खुद को तो कभी नहीं कहा, लेकिन दूसरे कहते थे। मम्मा ने भी कभी नहीं लिखा मम्मा सरस्वती, नहीं, बस जगत अम्बा सरस्वती, ये मम्मा का सिग्नेचर था। अभी तुम उनके सम्मुख बैठे हो, जानते हो वो बाप है निराकारी निरअहंकारी। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो, जानते हो वो हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु होते हैं। जो भी गुरु होते उनके भी तो गुरु होंगे ना। विवेकानंद भी गुरु था, लेकिन फिर कहेंगे वो किसका चेला था, स्वामी ये रामकृष्ण था, रामकृष्ण परमहंस का। तो भले वो गुरु था, लेकिन उसका भी तो कोई गुरु था। गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इनका तो कोई गुरु नहीं, शिव बाबा का कोई गुरु नहीं। ये सत बाबा सत टीचर सत गुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है। शिव बाबा भी आत्मा है, उनमें भी गुण है, ज्ञान का सागर शांति का सागर, ये गुण है उनमें। तुम्हारे गुण फिर अलग हो जाते हैं सतयुग में, तुम्हारे गुण अलग हो जाते हैं ना। सतयुग में तो हम सर्व गुण संपन्न कहलाते हैं, ज्ञान का सागर शांति का सागर तो नहीं कहलाते। तुम्हारे गुण अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के भी है। पर मास्टर, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शांति सागर, फिर ये हमारे गुण सतयुग में नहीं होंगे। इस समय जो गुण तुम्हारे हैं वही बाप के हैं, फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर प्यार का सागर है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, ये श्री कृष्ण की महिमा है, लेकिन शिव बाबा की ये महिमा नहीं है। क्यों नहीं है महिमा? ये वो भी तो कंप्लीट है ना, संपूर्ण है। तो श्री कृष्ण की महिमा है तो शिव बाबा की महिमा क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा कहते वो तो स्थिर है। श्री कृष्ण की आत्मा फिर भी चंद्रमा की तरह 16 कला फिर 14 कला 12 कला, वो कलाएं बदलती रहती है, लेकिन शिव बाबा की तो कलाएं बदलती नहीं है, वो तो स्थिर है ही। बाप कहते हैं ये टाइटल तो मुझे नहीं दे सकते हो, सर्वगुण संपन्न का टाइटल शिव बाबा को नहीं दे सकते हैं, फिर मैं थोड़ी विकारी बनता हूँ। पर क्योंकि सर्वगुण संपन्न जो आत्मा है फिर अंत में तो विकारी भी बन जाती है, पर शिव बाबा तो कभी विकारी बनते नहीं। इसीलिए 16 कला संपूर्ण ये जो महिमा ये शिव बाबा को नहीं दे सकते, सूर्य को नहीं दे सकते ये महिमा, ये चंद्रमा को ही दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं थोड़ी विकारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूं, मेरी महिमा इन जैसी थोड़ी करेंगे देवताओं जैसी। इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को तो क्या होगा, अभी तो जो बाबा के बनेंगे बाबा को याद करेंगे, बाकी पिछाड़ी में जो आएंगे उनका क्या हाल होगा? पिछाड़ी को तो हाय हाय कर रोते ही रहेंगे, दुनिया में अंत में क्या होगा, हाय हाय कर रोते रहेंगे। लेकिन तुम्हारे लिए हाय हाय नहीं होगा, हमारे लिए क्या होगा? तुम्हारे लिए फिर जय जयकार हो जाती है, उनके लिए हाहाकार और तुम्हारे लिए जय जयकार। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है, इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में नहीं लौटेंगे। इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो, उन यात्राओं से तो फिर घर लौट आते हैं। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं, भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह है और बीज कितना छोटा होता है, बीज तो इतना है और झाड़ कितना बड़ा, बीज कितना छोटा होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है। वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है, ज्ञान का एक टुबका भी सदगति कर देता है। टुबका माना एक टुबकी, एक बूंद, बस वो भी सदगति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते तो आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुम सीढ़ी चढ़ने में एक सेकंड लेते हो, बाबा के बने ओम शांति कहा, शिव बाबा कहा, वो चढ़ गए ऊपर। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में एक सेकंड लगता है, लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर, लिफ्ट इतनी अच्छी है नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। इसको कहा जाता है चढ़ती कला, सर्व का भला। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। अब ज्ञान और भक्ति का फर्क देखा है ना, कितना अंतर है ज्ञान और भक्ति में। ज्ञान भक्ति और वैराग्य कहते हैं ना, सन्यासियों का है हद का वैराग्य। तो बाप ने समझाया है वैराग्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक है हद का वैराग्य जिससे कोई सदगति नहीं होती, दूसरा है बेहद का वैराग्य जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है। अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की है श्रीमत। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर, ये भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं ये बातें तुम ही जानो, दुनिया नहीं जानती हा? हम श्रेष्ठ बन रहे हैं ये हम ही जानते हैं ना, दुनिया तो नीचे गिरती जा रही है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं ये बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है। तुम्हारे लिए तो कहते हैं, उस समय तो बहुत ये चर्चा थी ब्रह्मा कुमारियों के बारे में, तुम्हारे लिए कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली है, क्योंकि हम लोग विनाश 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 बहुत कहते थे, तो ये ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश कराने वाली है। सचमुच विनाश तो होना ही है, शेर आया शेर आया शेर आया कहते, शेर आया तो कहती है शेर तो आया नहीं, लेकिन बाबा कहते एक दिन आ जाएगा, शेर खा जाएगा बकरियों को। तो बाबा कहते हैं सचमुच विनाश तो होना ही है, इससे ही तो कल्याण होना है, विनाश से ही कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारत लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश करेंगी, बरोबर विनाश तो होना ही है, हम करेंगे नहीं, हम तो स्थापना कर रहे हैं, विनाश तो होना ही है, ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी और हम तो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, है ना। मोहिनी बहन का एक मिसाल हम देते हैं, मोहिनी बहन अमेरिका वाली, उनसे किसी ने पूछा कि विनाश कब होगा, तो मोहिनी बहन ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। मोहिनी बहन ने कहा वो जाके उस समय गॉर्बाचोव थे, वो यूएसएसआर के राष्ट्रपति, और अमेरिका के राष्ट्रपति बुश थे, तो या तो उसने कहा कि अगर विनाश पूछना हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति या रशिया के राष्ट्रपति से पूछो, क्योंकि बटन उनके हाथ में है, विनाश करने का बटन उनके हाथ में है, हमारे हाथ में विनाश का बटन नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है, स्थापना, नई दुनिया की स्थापना। तो नई दुनिया की स्थापना हम करने वाले हैं, वो भले पूछो कि स्थापना कब होगी। तो फिर बाबा उसका क्या उत्तर देते, स्थापना कब होगी, जब बच्चे तैयार हो जाएंगे। तो डेट तो है नहीं, हो तो बच्चे तैयार होंगे तब स्थापना पूरी होगी, बाकी विनाश का के लिए तो वो निमित्त है, तुम नहीं। तो इसीलिए कोई हमसे पूछे ना कि विनाश कब होगा, उनको बोलो अमेरिका और रशिया के राष्ट्रपति से पूछो, बटन उनके हाथ में है। तो बाबा कहते हैं हाँ बरोबर, विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम तो नई दुनिया स्थापन करते हैं, पुरानी के बाद नई जरूर होगी, कल्प कल्प विनाश होता है, तभी भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। परंतु वो लोग समझे कैसे, आगे चलकर बहुत समझेंगे, अभी हमको नहीं कहना पड़ता विनाश होगा, वो खुद मनुष्य समझते हैं कि ये विनाश करने वाले हैं। कल्प कल्प विनाश होता है, तब तो भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, परंतु वो लोग समझे कैसे, आगे चलकर बहुत समझेंगे, अभी समझ रहे हैं। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। हाँ कैसे, इस यज्ञ के अंदर विनाश, इस सारे यज्ञ के अंदर हो जाती है विनाश दुनिया। परंतु वो लोग समझे कैसे, पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है, तुम्हारा ये यज्ञ तो वंडरफुल है, जिसमें आहुति पड़नी है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी आहुति पड़नी है दुनिया की, ये भी तुम जानो और न जाने कोई, विजय तो पांडवों की ही होनी है और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो, ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, सबका दुख हरता सुख करता सदगति देने वाला एक ही बाप है, कितना मीठा कितना प्यारा बाप है, कहते आए हो ना मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इसका मतलब ये नहीं है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इसका मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ करके यहाँ आकर के बैठ जाओ, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई तो मैं यहाँ आके बैठ जाऊ, तो इस यहाँ घर बार छोड़ के यहाँ आकर बैठेंगे नहीं, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सात रोज का कोर्स ले फिर कहाँ भी जाओ मन मना भव, बाप को याद करना है और वर्षा पाना है, बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बड़ा बेड़ा पार है, याद की यात्रा से बेड़ा पार है, ये भी तुम जानते हो, पवित्र रहना है, हाँ ये भी जरूर जानते हो, छी छी खाना आदि नहीं खाना है, मुरली तो मिलती है फिर कहाँ भी जाओ, छी छी खाना नहीं खाना है, पवित्र रहना है, हाँ बाबा का ज्ञान मिलता रहेगा, मुरली मिलती रहेगी, कोई समय मुरली अगर नहीं भी मिलेगी, आफतें आएगी हंगामा आदि हो जाएगा, तो मुरली तो मिल नहीं सकेगी, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वो नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा, प्रलय तो होती नहीं, भले वा न भी मिले बाबा की याद तो होगी ना, तो बाबा कहते हैं सब भस्म हो जाएगा, प्रलय तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी होती है, न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है ना, अब तो कहेंगे ये ओल्ड वर्ल्ड है पुरानी दुनिया है, बाकी थोड़ा समय है, वो कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए कह देते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है, तो तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उनको क्या कहेंगे, पत्थर बुद्धि ना, एक्टर है पर क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो पत्थर बुद्धि कहेंगे, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये तो जानना चाहिए ना, जो अच्छी रीति जानते हैं बुद्धि में धारण कर फिर औरों को धारण कराते हैं, वो ऊंच पद पाते हैं। तो बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वो मैं अब तुमको दे देता हूँ। सारी नॉलेज बाबा हम बच्चों को दे देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ, जो कल्प पहले सुनाया था फिर ड्रामा अनुसार वो रिपीट करता हूँ, सब सुनाता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। कौन सा पार्ट बजाया? साक्षात्कार कराने का। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ। अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने, एक ही बार आता हूँ। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या मिला? सार, बाप समान ओबीडियंट बनना है। बाबा भी आज्ञाकारी बन आते हैं, बाबा कितना निरहंकारी है। तो बाप समान ओबीडियंट बनना है, आज्ञाकारी बनना है, कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरअहंकारी होकर के रहना है। दूसरा, बाप टीचर और सतगुरु के कॉन्ट्रास्ट को समझ, निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा पर रहना है। वरदान, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? एक बार मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? तो मम्मा ने सुंदर जवाब दिया, क्या कि अगर एक बार भूल हुई, चलो हो गई, लेकिन वो भूल दोबारा ना हो, उसको कहेंगे पुरुषार्थी। ये मम्मा के शब्द है। पुरुषार्थी ये नहीं मैं कर तो रहा हूँ ना पुरुषार्थ, भूले तो होती रहती है ना, मनुष्य का तो काम ही है भूले करना। तो दुनिया में ये कहावत है कि भूले करना ये मनुष्य का काम है, पर क्षमा करना ये भगवान का काम है। तो क्या इसका मतलब हम भूले करते रहे और वो क्षमा करता रहे, है ना? तो बाबा कहते ऐसे भी तो नहीं है, जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा देखो क्या कहते हैं, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। पुरुषार्थी शब्द अच्छी ढाल बन जाता है। कैसे? जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हैं हम तो अभी पुरुषार्थी है ना, हम कोई संपूर्ण थोड़ी बने, हम तो पुरुषार्थी है, भूले तो होती रहेगी। लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, वो बार बार भूले नहीं करेंगे। भूले का बार बार करते हैं, फिर सॉरी सॉरी करते हैं, पर तो एक बार वो भूल हो गई फिर दोबारा ना हो। तो यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है? पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पुरुष अर्थ। तो पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष, यानी मैं आत्मा, मास्टर, मालिक। स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना, देह अभिमान में आते हैं तब भूले करते ना। तो अपने आप को आत्मा पुरुष समझकर चलना, ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वे कभी रुकते नहीं हैं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं हैं, है ना। कई हिम्मत ही छोड़ देते, भाई मेरे से तो नहीं होता, क्योंकि हार खाते रहते हैं बार बार। लेकिन जो सच्चे पुरुषार्थी हैं वो हिम्मत नहीं हारते, वो उनकी मंजिल सामने है, वे कभी रुकते नहीं है, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं है। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। कौन सी स्मृति? मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके लिए कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। एक मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस करो, तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सहज होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए। अव्यक्त रूप में स्थित होकर के मैं फरिश्ता हूँ, ये स्थिति अभी सहज होती जा रही है, वैसे बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए। तो यही योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। बिंदु रूप की स्थिति ही योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा, और जो टीचर्स बहने नीचे से आई है, देख रहे हैं, बहुत आई है, हाथ उठाए टीचर्स बहने, तो आप सबका भोजन, दिन का भोजन, सवेरे का नाश्ता सबका ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होगा, वहीं जाएंगे, वहीं भोग भी मिलेगा। और जो भट्टी में आए हैं वो सब भाई बहने हाथ उठाएं। अच्छा, तो आज आपके भी क्लासेस हैं सवेरे से लेकर रात्रि तक, ठीक है सब भट्टी वाले? आप लोगों को कहा था ना 3 M, मोबाइल का मौन, मुख का मौन और मन का मौन, वो रख रहे हैं भट्टी वाले। अभी भी देखते हैं कितने मोबाइल बजते रहते हैं, यहाँ आते हैं यहाँ भी मोबाइल बजता रहता है, और वो आवाज कितना गूंजता रहता है, क्योंकि छत अभी वो पूरी पड़ी नहीं है, तो वहाँ आपका मोबाइल बजता है, ये पूरे हॉल में गूंजता है। तो कृपया जब हॉल में प्रवेश करें मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। मोबाइल तो स्विच ऑफ करते ही नहीं है, लेकिन दिन भर में जो हमारे ट्रैफिक कंट्रोल के गीत है वो भी बजते रहते हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए, कोई भी देहधारी को याद तो करना ही नहीं है, तो मोबाइल क्यों आना ऑन होना चाहिए? सब भट्टी वालों का मोबाइल स्विच ऑफ है, हाथ उठाए जिनका मोबाइल स्विच ऑफ है, सबका नहीं है ना, सब नहीं हाथ उठा रहे हैं। अभी स्विच ऑफ कर दो, ऐसे नहीं कि सारा दिन मोबाइल बजता रहे, और मौन में रहना है, ये भी बाबा सिखाते हैं। तो भट्टी कर रहे हो पकना है, बाबा कहते हैं भट्टी में पकना है, पकना माना पूरा परिवर्तन, एकदम परिवर्तन माना कोई भी पुराने संस्कार, पुरानी आदतें सबको मिटाना है, स्वाहा करने आए हो ना यज्ञ में आए हो, तो स्वाहा करने आए हो तो जितना स्वाहा करते जाएंगे उतनी आत्मा शुद्ध बनती जाएगी। यज्ञ है ये, परिवार का परिवार भी है तो यज्ञ का यज्ञ भी है, यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी भी है, सब कुछ है। तो ऐसे स्थान पर हम आए हैं और सब बेहद है, हद की तो बात ही नहीं है, सब बेहद में बैठे हैं। बेहद के त्यागी वैरागी सन्यासी, तो सब बेहद में, हद में कहीं बुद्धि फंसनी नहीं चाहिए। अगर हद में कहीं बुद्धि फंसी, थोड़ा अभिमान दिखाया, अहंकार दिखाया, नशा दिखाया, थोड़ा अपना रोब दिखाया, बाबा कहते फेल। तो ऐसे निरहंकारी हमें बनना है ना, कुछ भी हो जाए हमें निरहंकारी बनना है बाप समान। तो जब ऐसे निरहंकारी बनेंगे तभी तो बाप समान बन के उड़ेंगे ना, हल्के होंगे। तो इसीलिए कोई भी प्रकार का अहंकार न हो, अपने अंदर देखना है मेरे बोल कैसे हैं, मेरी सोच कैसी है, मेरे कर्म कैसे हैं, कितना मीठा हूँ। बाबा के लिए पूछते हैं, बाबा को कभी गुस्सा आता था? बाबा को कभी गुस्सा नहीं आता था, जो भी कहते थे बच्चे बच्चे कह करके प्यार से बाबा समझाते थे, हर बात में प्यार से समझाते थे बच्चे बच्चे कहकर। अगर बाबा की मुरली आप देखेंगे ना, जो साकार मुरलियां हैं, अगर वो सुनेंगे आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, कितनी बार बाबा मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे, वो तो सब एडिट करना पड़ता है तभी चार पेज की मुरली बनती है, नहीं तो कितने पेज हो जाए मुरली के। तो बाबा के तो हम सब मीठे बच्चे, हमारी दादियों के भी हम मीठे भाई, हमारी यीशु दादी थी, बहुत विशेष आत्मा थी। और कैसे कोई भी कोई कुछ करता था, क्योंकि खजांची थी तो कई बातें होती थी तो भी कहेंगे मीठे भाई मीठे भाई, तो मीठे भाई कह के कैसे उसको भी शांत करती थी। तो ये हमारे बाबा हमारी दादियां, तो हमको भी उनके जैसा ही बनना है। ओम शांति।
ओम शांति। कितनी प्यारी प्यारी बातें बाबा और दादियों की उन्होंने हम सबको करके दिखाया, केवल डायरेक्शन नहीं दिए, प्रैक्टिकल खुद करके दिखाया। चाहे बाबा मम्मा दीदी मनमोहिनी प्रकाशमणि दादी अन्य सभी दादियों का किस किस का नाम लें, अभी यीशु दादी के बारे में आप सुन रहे थे, बहुत सिंपल बहुत इकोनॉमिकल और बाबा के हर डायरेक्शन को सच्चाई और सफाई से चलने वाली और चलाने वाली। एक एक एडवांस पार्टी की दादियों की कहानी तो ऐसी है जो जीवन के अंदर प्रेरणा देने वाली है। तो अभी आज गुरुवार के दिन हम सब मिलकर के बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, और जो भी भाई बहने बाबा के पास भोग स्वीकार कराने के लिए वतन में जाएंगे वो हाथ खड़ा करें। फिर ये नहीं कहना कि बाबा को हमारी याद देना, खुद जाएंगे तो खुद ही बाबा को याद देना है, बाबा आपकी याद को स्वीकार करेंगे और बाबा आप सबको वतन में बुला करके रू रूहान भी करेंगे। बाबा प्यार भी करते हैं, बाबा बच्चों के बिना नहीं रह सकते हैं, और बाबा को हमेशा लगता है कि जब भी भोग स्वीकार कराते हैं तो बाबा हमेशा देखते हैं सब बच्चे बाबा के सामने बैठे। साकार में हमें याद आता है कि जब भी भोग स्वीकार कराते थे सब बच्चे भोग में बैठते थे, तो अभी भी बाबा वतन में सब बच्चों को बुलाते हैं और सब बच्चों को भोग स्वीकार कराते हैं और वरदानों से भी भरपूर करते हैं। अच्छा, भट्टी के आए हुए भाई बहन हाथ उठाए, तो भट्टी वाले सब जाएंगे ना बाबा के पास है? विशाखापट्टनम वाले हाथ उठाओ, सब जाएंगे? भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? सब जाएंगे ना? है, अच्छा अच्छा, सबको जाना है, ट्रांसलेशन मिल रहा है ना? अभी बाबा के पास जाएंगे, हम सब मिल करके बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन उस स्टैंड के पास होगी। और भट्टी के भाई हाथ खड़ा करें, भट्टी के भाइयों का ये बीच में लाइन होगी। भट्टी की टीचर्स बहने हाथ खड़ा करें, भट्टी की टीचर्स बहने इस कैमरा स्टैंड के पास होंगी या अन्य टीचर्स बहने, और फिर उसके बाद भट्टी की माताएं होंगी और बाकी 2 लाइनें होंगी अन्य बहनों की अमृत पीने के लिए। तो इसलिए सभी को बहुत ही प्यार से अव्यक्ति स्टेज में आकर के लाइन में आराम से खड़े होकर के अमृत पीना है। सबको इकट्ठे खड़े नहीं होना है, 5-10 मिनट में ही बाबा बहुत प्यार से सबको अमृत पिलाते हैं। उसी स्मृति से, उसी स्वरूप से ही सबको अमृत स्वीकार करना है। अभी हम चलते हैं बाबा के पास, और जो भाई बहने शांति मन से वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, तो शांति मन से आए हुए भट्टी के और अन्य जो भी भाई बहने हैं, सभी का सुबह का नाश्ता ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, क्योंकि नीचे बैठने का स्थान नहीं है, इसलिए सभी को सुबह का नाश्ता ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में ही करना है। और कोई नहीं भी चढ़ सकते हैं तो बड़े डाइनिंग हॉल में जाने के लिए वहां पर लिफ्ट भी है, तो लिफ्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नीचे बैठने का स्थान नहीं है। अच्छा, ओम शांति।
Thank you. के पीरों के प्रेम की डोर में मोती पीरों के कर ले सच्चा श्रृंगार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के
अमृत पीते हैं तेरी याद में
जीते हैं बाबा तेरी याद में, जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रह याद सदा ही साथ तेरी, रह याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन प्यारे प्यारे बाबा के पास सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में पहुंचते ही क्या देखती हूं कि बाबा एक बहुत सुंदर गोल्डन पहाड़ी के ऊपर खड़े थे और बाबा के सामने विश्व का ग्लोब था और बाबा उस विश्व के ग्लोब को दृष्टि और बाबा के नैनों से लाइट की किरणें विश्व के ग्लोब पर पहुंच रही थी और वो ग्लोब बहुत सुंदर चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड में देखते ही बाबा के साथ ही कुछ स्टार्स बाबा के साथ हैं और वो स्टार्स भी बहुत चमकते हुए उनकी लाइट भी विश्व के ग्लोब पर पहुंच रही थी। कुछ समय के बाद बाबा ने मेरे को देखा, कहा आओ बच्ची। मैं जैसे बाबा के पास पहुंची तो मैं भी आश्चर्य से वो दृश्य देख रही थी। बाबा ने कहा बच्ची बाबा क्या कह रहे हैं। मैंने कहा बाबा ये दृश्य तो बहुत सुंदर लग रहा है। बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों की नई दुनिया को परिवर्तन परफेक्शन की स्टेज में लाने के लिए बाबा हर रोज विश्व के ग्लोब को सामने ला करके और उसको परिवर्तन करने का कार्य फास्ट गति से और परफेक्शन के कार्य को भी तीव्र गति से कराने का कार्य कर रहे हैं। बाबा ने कहा केवल बाबा नहीं, ये जो स्टार्स आप देख रहे हैं ये यज्ञ के आधार मुहूर्त फाउंडेशन के जो निमित्त हैं वह सब मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं और सभी स्टार्स के अंदर एडवांस पार्टी के मम्मा दीदी दादियां सब दिखाई देने लगे तो सब के सब हाथ में हाथ देकर के ऐसे सर्कल में खड़े थे तो वो बता रहे थे कि हम हर कार्य को यूनिटी से एक दूसरे के विचारों को सत्कार देते हुए और मिल करके प्लान करते हैं ताकि हमारा जो लक्ष्य है विश्व का नई दुनिया का जल्दी संपन्न हो सके। तो फिर बाबा ने कहा बाबा और यज्ञ के फाउंडेशन तो कर रहे हैं लेकिन यज्ञ के अन्य बच्चे ब्राह्मण परिवार भी इस कार्य में सहयोगी हैं। तो बाबा ने क्या किया
कि ऐसे हाथ किया तो क्या देखती हूँ, बहुत से बच्चे वतन में इमर्ज हुए और वो बाबा को देख करके विश्व के ग्लोब को साकाश की किरणें दे रहे थे। देखते देखते क्या देखते थे, किसकी किरणें आधे तक पहुंचती थी और किसकी किरणें वहां पर पहुंच के वापिस लौट करके आती थी। तो बाबा भी देख रहे थे। बाबा ने कहा, इस कार्य के अंदर सभी ब्राह्मण परिवार निमित्त तो है, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, कार्य करते समय चेकिंग करते हैं कि ये जो मैंने कार्य किया ठीक हुआ या नहीं हुआ, और कई बच्चे ऐसे हैं वो काउंटिंग करते गिनती करते हैं कि मैंने इतना टाइम किया, मैंने इतना समय किया। तो वो काउंटिंग जो करते हैं तो उसका पूरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो बाबा ने कहा, अभी समय को देख करके ये नहीं सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे कारण ही हो रहा है। सभी बच्चों का एक ही काम है, अपने संगठन में मजबूत होकर के एक ही संकल्प के द्वारा कि अब ये दुनिया परफेक्ट बन रही है और इसको परिवर्तन करने वाले हम बच्चे हैं, और हम बच्चे परिवर्तित होंगे और तब ये परिवर्तन का कार्य शुरू होगा। बाबा ने कहा, ये सारा परिवर्तन का कार्य बच्चों की स्टेज पर ही निर्भर है। बच्चे जैसे ही संपन्न बनेंगे तो उतना विश्व भी संपन्नता की ओर जल्दी बनेगा। फिर बाबा जैसे सबको दिखा रहे थे, सब इतने स्टार्स थे और वो स्टार्स इतने दिखाई दिए कि पूरे विश्व के अंदर, ग्लोब के अंदर सभी स्टार्स के द्वारा प्रकृति और वायुमंडल और वहाँ का सतयुगी दुनिया के नज़ारे इतने सुंदर, हरे भरे और चारों तरफ खुशहाली दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा, ये सारा जो प्रकृति का परिवर्तन, सतयुगी दुनिया की हरियाली और सतयुगी दुनिया के नज़ारे जो हैं, वो अभी बच्चों की आंतरिक स्थिति पर आधारित थे। तो बच्चों को अपनी आंतरिक स्थिति को एक तो प्योरीफाई करना है। प्रकृति तब प्योरीफाई होगी जब बच्चों की आंतरिक स्थिति प्योरीफाई होगी। दूसरा, अपने संस्कारों को गोल्डन संस्कारों की तरह बनाना है। अभी तक बच्चों की संस्कारों के अंदर कुछ न कुछ मिक्सचरिटी होती है, कभी किसी बात का चिंतन, कभी थोड़े नेगेटिव, कभी थोड़े व्यर्थ होते हैं, और ये संस्कारों के अंदर जो मिक्सचरिटी का, जो माया का प्रभाव पड़ता है, वो हमारी स्थिति और स्थिति के कारण ही विश्व परिवर्तन के कार्य के अंदर कुछ न कुछ रुकावट डालता है। तो बाबा ने कहा, बच्चों को विशेष जो है, कुछ भी हो जाए, अपने प्योर थॉट्स को गोल्डन बनाएं, ऐसा गोल्डन बनाएं कि जैसे हर चीज में कल्याण है और कल्याण की भावना हर परिस्थिति में स्वयं के प्रति, पुरुषार्थ के प्रति कल्याण की भावना रखेंगे तो वो गोल्डन स्थिति रहेगी। माया तो कई प्रकार की परीक्षाएं लेने के लिए कई प्रकार के लुभावने दृश्य दिखाएगी, लेकिन बच्चों को इन लुभावने दृश्यों से प्रभावित नहीं होना है। दूसरी बात बाबा ने कही कि अपने जो संगठन है ब्राह्मण परिवार के अंदर हर बच्चे को बाबा ने अपना बनाया है, उनके अंदर विशेषता है, उनकी विशेषताओं को और बढ़ाने के लिए उनके प्रति भी कल्याण की भावना रखें। और तीसरी बात बाबा ने कही कि प्रकृति को साकाश के साथ ये ध्यान देना है कि प्रकृति परिवर्तित होने के साथ साथ उसके अंदर प्योरिटी कितनी आ रही है, वो प्योरिटी के वाइब्रेशन भी उनके पास भेजने हैं, क्योंकि प्रकृति इंतजार कर रही है आप इष्ट देव उनको भी वरदान दें और वो वरदानों से अपने को प्योरीफाई कर सके। फिर बाबा ने कहा सबसे बड़ी बात जो है, जो विश्व के बड़े लोग हैं, अथॉरिटी वाले हैं, किसी भी फील्ड के हैं, चाहे वो साइंस के हैं, चाहे और किसी फील्ड के हैं, धर्म नेताएं हैं, उनको भी आप ऐसे वाइब्रेशन दें कि उनको लगे कि परमात्मा हमारी पुकार सुन रहा है। तो मैंने कहा बाबा उनको तो वाइब्रेशन देते हैं। बाबा ने कहा वाइब्रेशन देते हैं लेकिन ये नहीं उनको बताते हैं कि परमात्मा ही, बाबा ही हमारा सच्चा साथी है, वही सब कुछ देने वाला है, उससे संबंध कैसे जोड़े वो उनको नहीं बताते हैं। वो बाहरी प्रभाव में आते हैं लेकिन परमात्म शक्ति को अभी वो कम पहचान रहे हैं। तो उनको परमात्म शक्ति का अनुभव हो कि परमात्मा ही हमारा साथी और वही कराने वाला है, वही हमारा पिता है, ये अनुभूति अभी तक नहीं कराते हैं। तो फिर बाबा सब बच्चों को प्यार कर रहे थे और बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, बाबा ने सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने कहा सब बच्चे वतन में आए हैं, बाबा बच्चों को खाली हाथ नहीं भेजेंगे, क्योंकि बाबा के पास जब बच्चे आते थे बाबा हमेशा बच्चों को कोई ना कोई गिफ्ट देते थे। तो मैं सोचने लगी आज भी बाबा कुछ गिफ्ट देंगे, तो बाबा ने कहा बच्चे आज तो बाबा बच्चों को गिफ्ट देंगे। तो जैसे ही बाबा ने किया तो बाबा के पास ऐसा फ्लावर स्टाइल तीन फ्लावर थे और वो तीन फ्लावर बाबा ने जैसे गोल्डन भी थे और उसके अंदर लाइट की किरणें भी निकल रही थी। तो उस फ्लावर के अंदर एक फूल में लिखा हुआ था कि बाबा हमारा सर्वशक्तिवान साथी है, दूसरे फूल में लिखा हुआ था निमित्त और निर्माण भावना, तीसरे फूल में लिखा हुआ था रहम दिल से, रहम दिल बन प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। तो ऐसे वो दिया तो सबके पास वो तीन फूल का एक गोल्डन सा वो सबके पास पहुंचा और उस फूल के ऊपर शिव बाबा का झंडा था और वो झंडे से लाइट निकल रही थी। बाबा ने कहा अभी भी बच्चे क्यों देरी कर रहे हैं, बाप की प्रत्यक्षता का झंडा पूरे विश्व में फैलाना है, वो बच्चे कर सकते हैं बाप को साथी बनाकर, निमित्त और निर्माण भावना और रहम की भावना से हर एक को अनुभव कराएंगे, तब बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। फिर बाबा ने सबको याद दिया और फिर जिनके निमित्त भोग थे बाबा ने उन सबको इमर्ज करते हुए याद प्यार दिया। बाबा ने कहा जिन्होंने भोग लगाया है बाबा उनको रिटर्न में वरदान और उनके संकल्पों को साकार करने के लिए शक्ति दे रहे हैं। सबको याद दिया। ओम शांति।